ओम शांति, ओम शांति। आप सभी इस लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस फॉर पीक परफॉर्मेंस इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं और इसके अंतर्गत एक बहुत सुंदर सेशन रहेगा और आज का जो इनसाइट सेशन है इसका जो थीम है ब्रह्मा बाबा एम्बॉडीमेंट ऑफ बैलेंस। बहुत सुंदर एक अद्भुत विषय है। कल से हम लोग सुन रहे हैं कि बैलेंस के बारे में सुन रहे हैं ना। आप लोगों को क्या लगता है, बैलेंस रखना इजी है मुश्किल है? बातें तो बहुत सुनी लेकिन क्या लगता है, बहुत मुश्किल है, सहज है? सोचने वाली बात है ना। कहते सुनना सुनाना आसान हो जाता है लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो मुश्किल होता है, है ना? तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, तो बहुत सुंदर ये सेशन होने वाला है। अभी हम 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं, उसके बाद इस सेशन को आरंभ करते हैं। आज हम लोग जो ब्रह्मा बाबा जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, सिंध हैदराबाद पाकिस्तान में अभी चला गया है, पहले भारत का हिस्सा था तो वहां हमारा ये कारोबार शुरू हुआ और उसके बारे में भी हम लोग सुनेंगे। तो 1936-37 में ये बाबा ब्रह्मा बाबा जो ये कार्य शुरू किया हमारा। पहले ब्रह्मा बाबा का नाम था दादा लेखराज, लेकिन जब परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना ब्रह्मा बाबा का नाम, लेखराज जी का नाम ब्रह्मा बाबा रखा। और ब्रह्मा बाबा जैसे अभी सवेरे हमने सुना मोहन सिंगल भाई साहब से कि एक अकेले व्यक्ति ने इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी चैलेंजेस आए होंगे, कितनी समस्याएं आई होंगी। एक हट करके कार्य शुरू करना कितने चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा बिल्कुल बैलेंस्ड पर्सनालिटी वाले थे। किसी भी तरह कितनी सारी समस्या आए लेकिन बाबा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज सवेरे सुन रहे थे, बैलेंस वाली बात, कर्म और योग का बैलेंस, डिटैच्ड एंड इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे बैलेंस की बातें, तन मन। और अभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि ब्रह्मा बाबा में एक भावनात्मक और विजडम, कहते भावनाएं भी हो और विवेक का भी हो, क्योंकि हम भावनाओं में बह जाते हैं लेकिन वहां विवेक इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ब्रह्मा बाबा में दोनों का ही बहुत सुंदर बैलेंस था। और तन मन का भी इतना सुंदर बैलेंस था, तन से कितनी सारी समस्या आ गई, लास्ट में शरीर का कर्म भोग आया लेकिन ब्रह्मा बाबा के चेहरे पे बिल्कुल लगा नहीं कि ब्रह्मा बाबा बहुत बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं। जब भी उनसे पूछते थे कि बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको दर्द हो रहा, तो कहते नहीं, मुझे तो दर्द नहीं हो रहा है, इस शरीर को दर्द है, शरीर का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो तन के भी समस्याएं आए, लेकिन वो मन को इफेक्ट होने नहीं दिया, जबरदस्त बैलेंस। ऐसे ही बाबा लॉ एंड लव का बैलेंस रखते थे, इतना प्यार बाबा देते थे, लेकिन जहां नियम मर्यादाओं की बात होती थी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते थे लॉ एंड लव का। आज हम जनरली क्या करते, बच्चों को या तो बहुत ही प्यार करेंगे या तो फिर डांटते रहते हैं। इससे क्या होता है कि बिगड़ जाते बच्चे। तो लाइफ को बैलेंस रखना आज की डेट में बहुत जरूरी है। आज इम्बैलेंस हो गया है, तभी हमें हमारे जीवन में हमें किसी से ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। ब्रह्मा कुमारीज में बहुत अच्छी बात यहाँ बताई जाती है कि अगर आप हर चीज का बैलेंस रखोगे तो आपको परमात्मा से और जिनके साथ आप रहते हैं सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगे और आपकी लाइफ क्या बन जाएगी, ब्लिसफुल बन जाएगी, सुखमय बन जाएगी। लेकिन आज टेंशन क्यों है, क्योंकि हम कभी भी बैलेंस नहीं रख पाते। ऑफिस का काम घर ले आते हैं, घर की बातें ऑफिस ले जाते हैं, ऑफिस में जो कोलीग्स हैं और भी जो बातें हैं वो बच्चों के सामने ले आते हैं, और बच्चों की बातें, फैमिली की बातें ऑफिस में ले जाते, वहीं पर ही टेंशन का कारण बन जाता है। तो ब्रह्मा बाबा में हम लोगों ने सुना है कि हमने तो नहीं देखा, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी सुनी है, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोगों से हमने सुनी है। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं। तो आज शाम को मेरे को किसी ने पूछा कि आप जो बैलेंस वाली बातें कर रहे हैं, क्या सचमुच आपकी संस्था में कोई ऐसे बैलेंस्ड पर्सनैलिटी वाले है क्या? तो मैंने उनको उत्तर दिया, मैंने कहा आज सेशन वही सेशन है। हम ऐसे एक व्यक्ति नहीं, लेकिन अनेक ऐसे बैलेंस्ड पर्सनैलिटी वाले आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सिर्फ आज हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में हम सुनेंगे, और वो हस्ती आपके सामने बैठी है जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की डायरेक्ट पालना ली है, देखा है, सुना है, उनकी हर बात को समझा है, उन्होंने प्रैक्टिकल में देखा है, उनकी खूब अच्छी तरह से पालना ली है, और ब्रह्मा बाबा की डायरेक्शन अनुसार, शिक्षाओं के अनुसार हमारे आदरणीय मोहन सिंघल भाई साहब कार्य करते रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ शिक्षाएं नहीं दी, लेकिन शक्ति भी दी है। तो आज हम मोहन सिंघल भाई साहब से सारी बातें सुनेंगे कि बाबा की पर्सनैलिटी बैलेंस वाली किस प्रकार से थी। आदरणीय मोहन सिंघल भाई साहब,
ओम शांति। 2 दिन से आप सभी बैलेंस से संबंधित बातें सुनते आ रहे हैं। एक बैलेंस तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, कौन सा? बैंक बैलेंस। जितना बढ़ता जाता है, बस चाहे साथ में हो ना हो कैश, लेकिन पहले तो पासबुक देखा करते थे, अभी तो मोबाइल से भी, तो देख के ही प्रसन्नता होती है कि हाँ बढ़ रहा है, राइट। वो भी जीवन के लिए, धन भी आवश्यक है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि धन भी बहुत होते हुए भी आज ऐसे मल्टी मिलियनर फैमिलीज हैं कि माँ बेटे में वो स्नेह नहीं है, भाई भाई में नहीं है, आदि आदि। तो मैं और अधिक नहीं, क्योंकि समय का भी अभाव है तो हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, और जैसा बहन जी ने बताया कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का। मैं इस इंस्टीट्यूशन के कांटेक्ट में 1962 में आया, और उस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद बाबा से कांटेक्ट बढ़ता गया। तब तो हमारा ईश्वरीय परिवार बहुत छोटा था, और बाबा के बस निर्देशानुसार ही मेरा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जाना हुआ। वहाँ से मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की, अप्लाइड जियोफिजिक्स से कंसर्न, और उसके बाद 1963 से 67 तक धनबाद में रहा, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के और क्लोज कांटेक्ट में आया, और 67 में ही पास करके तभी मैंने ONGC ज्वाइन किया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और उसमें मैं लगभग 28 वर्षों तक विभिन्न प्रोजेक्ट्स में रहा। और इस संबंध में मैं काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में बाबा के भी आया, और साथ ही साथ मुझे आसाम और ऑल द 7 स्टेट्स ईस्टर्न इंडिया की, वहाँ पर भी ONGC के कंसर्न में मुझे जाने का मौका मिला। देहरादून में भी मेरा रहा अपॉइंटमेंट, बॉम्बे और भावनगर आदि आदि, और अधिक समय मुझे गुजरात में पास करने का भी मौका मिला। तो मैं इस संबंध में बता दूं, जैसा बहन जी ने बताया, ये दादा लेखराज इनका नाम था, और फिर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, और जब इनके साथ ही संपर्क में क्या, इन्होंने ही इसकी स्थापना की, स्थापना परमपिता परमात्मा ने की इनके द्वारा, तब इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। ये उस समय का है कि जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शुरुआत हुई, जैसा बहन जी बता रहे थे हैदराबाद सिंध में, और उसके बाद वहाँ पर आपका रहा, और वर्तमान समय ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व के लगभग 140 स्थानों पर ये फैला हुआ है देशों में। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उनके संबंध में थोड़ा परिचय, दादा लेखराज बहुत बड़े हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, और ये इनका लौकिक परिवार, बाबा दादा लेखराज जी, उनकी पत्नी जसोदा, और उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, ये छोटा सा परिवार और सब। लेकिन बाबा का संस्कार ऐसा था कि अथा धन धान्य होते हुए भी आप समझ सकते हैं हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, लेकिन फिर भी ईश्वरीय प्रेम बहुत अद्भुत था उनमें, दान पुण्य बहुत किया करते थे, और विशेष करके गरीबों की सेवा भी, और उसमें लेकिन एक बात थी कि वो सदा सत्य की खोज में रहते थे, परमात्मा कहाँ मिले, कहाँ ईश्वर के दर्शन हो और उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो एक बार वो अपने मित्र के यहाँ बनारस में गए हुए थे, और तब उस समय ही बाबा को भी विष्णु चतुर्भुज, यहाँ मैं ये बताना भूल गया कि बाबा विष्णु के अनन्य भक्त थे, और उनके पॉकेट में विष्णु की एक फोटो भी सदा रहती थी, और साथ में जहाँ बिजनेस होता था वहाँ ड्रॉर में विष्णु चतुर्भुज। तो विष्णु के 4 विभिन्न स्वरूपों का उन्हें साक्षात्कार हुआ, और वो देख के बहुत अथाह प्रसन्न हुए, उन्होंने अपने जीवन को धन्य माना, और उसमें देखते हुए भी बहुत खुशी में थे। तभी साथ ही साथ उन्हें कुछ दिन में दूसरा साक्षात्कार हुआ, जब उन्होंने इस विश्व के परिवर्तन का साक्षात्कार किया, उन्होंने देखा ये कलयुगी दुनिया, इसमें विशेष परिवर्तन आ रहा है 3 चीजों के माध्यम से, ये मैं बात 1936 से लेकर के आगे की कर रहा हूँ। 1940 के बीच में ये जब बाबा को और साक्षात्कार हुए, तो बाबा को साक्षात्कार पहली बार हुआ कि ऊपर से कोई चीज जैसे बम जैसा गिर रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है। उस समय किसी ने एटम का भी नाम नहीं सुना था। आपको ख्याल है कि एटम बम का 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर पहला प्रयोग हुआ, लेकिन 1940 और उसके आसपास तब तक किसी ने भी एटम बम का नाम नहीं सुना था। तो एक तो परिवर्तन ये देखा इस कलयुगी दुनिया का कि बम का, दूसरा कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, विभिन्न धर्म वाले विभिन्न संप्रदाय वाले आपस में लड़ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे भी बुजुर्ग और बैठे हों जिन्होंने 1947 का देखा हुआ हो किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे भारत के विभाजन, भारत की स्वतंत्रता के बाद। और तीसरा बाबा ने देखा कि जो पांच तत्व हैं जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इनके द्वारा अथाह विश्व में परिवर्तन हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं, विश्व की भी बात करें चाहे भारत की, जल के द्वारा कितना महाविनाश हो रहा है, कभी अग्नि के द्वारा होते हैं अति गर्मी, कभी बादल फटने का आदि आदि। पांचों तत्वों का अर्थक्वेक का भी देखते हैं, एक अर्थक्वेक आता है लाखों लोग मर जाते हैं। और इन सब के द्वारा भी और विभिन्न रॉयट्स वगैरह के द्वारा रिसेंटली वेरी रिसेंटली फ्यू डेज बिफोर ओनली वी हैव सीन इन नेपाल ऑल्सो कि नेपाल में किस प्रकार से उसका। तो ये कलयुग के परिवर्तन का कहें अथवा विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। और उसके साथ साथ बाबा ने एक ये भी साक्षात्कार किया, ऊपर सितारे सितारे जैसे हैं, ये हम यहाँ पर शरीर के द्वारा पार्ट प्ले कर रहे हैं सृष्टि में, लेकिन हम सब आत्माएं हैं। वो शिविर के माध्यम से आज भी शिवानी बहन ने भी मी एंड माइन वाले फर्स्ट उसमें आपको उसका परिचय कराया, आप और भी उसके द्वारा और आगे सुनेंगे। तो ये परम धाम से जैसे आत्माएं आ रही हैं और नीचे आकर के वो उतरते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं, और इस प्रकार से कोई राजकुमार और कोई राजकुमारी का रूप ले लेता है। तो ये बाबा का देखा, लेकिन ये सब देखते हुए भी अथा सुख की अथा दुख की बातें भी देखते, एक तरफ विनाश एक तरफ स्थापना का कार्य। तो ये बाबा ने देखा ऐसी दुनिया, ये वास लक्ष्मी नारायण की, सोने चांदे पुष्पक विमान, सब प्रकार के सुखी सुख। और फिर बाबा के कानों में आवाज आई, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। तो ब्रह्मा बाबा तो एकदम अवाक रह गए, दादा लेखराज जी मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे तो मालूम नहीं इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। और इस प्रकार से बाबा करते रहे, देखा। तो एक तरफ बाबा ने दुनिया के विनाश का साक्षात्कार किया और दूसरी तरफ नई सृष्टि की स्थापना का। और तब से बाबा का जीवन बस बैलेंस यहीं से ही देखने को मिला। एक तरफ बाबा का लौकिक परिवार भी था, वो भी साथ में था, लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मा बाबा को जो देखता था, उनके द्वारा किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को श्री नारायण का, कोई रास कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और ऐसी नई दुनिया के साक्षात्कार में बाबा देखते रहे और बाबा को खुद पता नहीं चलता था ये क्या हो रहा है। तो ये बैलेंस भी बाबा ने वेल मेंटेन्ड रखा कि लौकिक दुनिया का। और तब बाबा ने समझा, अपने पार्टनर को भी बोला कि भई ये हीरे जवाहरात का व्यापार अब तुम ही संभालो और अब मैं ईश्वरीय कार्य में अपना जीवन समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से बाबा का जीवन परिवर्तन हुआ। और इसी गुरु बाबा के अनेक गुरु भी थे, मैंने बताया ना, वन ईश्वर के सब सदा सानिध्य में परमात्मा में ये रहने वाले थे, चाहते थे, इसीलिए गुरु इन्होंने वन आफ्टर अनदर कई गुरु भी किए, गुरु से लाभ भी उठाया। एक बार इनके एक गुरु आए हुए थे, सत्संग चल रहा था, बाबा उठ के गए और बाबा ने पहले परमात्मा शिव का साक्षात्कार भी किया और बाबा अपने कमरे में गए, गुरु का सत्संग चल रहा है और उसमें से उठ के गए। बाबा के पीछे पीछे बाबा की पुत्र वधु भी गई और पुत्र वधु ने जाकर देखा बाबा अपने कमरे में जैसे बैठे। और ये जो आप देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि ऊपर से एक ज्योति आई और बाबा के अंदर समा गई। निराकार परमात्मा शिव का ये प्रथम अवतरण था, प्रथम 1936-37 के समय, और ये परिवर्तन में ही बाबा ने देखा कि किस प्रकार से परमात्मा का अवतरण उनके शरीर में हुआ, उनकी पुत्र वधु ने देखा। क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, बोलेगा कैसे, तो उसे बोलने के लिए एक साकार शारीरिक माध्यम की आवश्यकता, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। और उसके बाद जब परमात्मा की प्रवेशता हुई तो प्रथम महावाक्य यही निकले, परमात्मा ने अपना परिचय स्वयं दिया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात ये निजान मेरा स्वरूप जो है ना, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ और प्रकाश स्वरूप, और शिव मेरा नाम है। तो ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने, जो निराकार है, उसने साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से अपना परिचय दिया। तो ये परिचय के बाद भी बिल्कुल बाबा का जैसे जीवन भी आध्यात्मिक तो था ही पहले से, लेकिन बहुत अंतर्मुख हो गए, गंभीर हो गए, एकांत प्रिय और बाबा हो गए और सदैव ईश्वरीय चिंतन में रहने लगे। उन्होंने सत्संग शुरू किया अपने घर में ही और वो सत्संग बढ़ता गया बढ़ता गया। पहले परिवार के लोग हुए, फिर आसपास के लोग, संबंधी, और इस प्रकार से वो सत्संग जब बढ़ता गया और आते थे दादा लेखराज यानी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को देखते थे, देखते ही देखते ब्रह्मा बाबा जैसे लुप्त हो जाते थे और लोग देखते थे उनमें श्री कृष्ण दिख रहे हैं, किसी को श्री नारायण का साक्षात्कार होता था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जो थी ब्रह्मा बाबा, वो वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा थी, वो भी आपको आगे शिविर में बताया जाएगा। और इस प्रकार से वो सब देखते देखते बाबा सत्संग और आगे बढ़ाते चले गए और देखते देखते ही हजार सैकड़ों की संख्या में लोग उन सत्संग में आने लगे। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार की प्रथा जैसे वहां पर वो चलने लगी, सब आते थे और भगवान का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को देखते देखते ही उन्हें होने लगता था। और उस सत्संग में आने वाली एक कुमारी जिनका नाम राधे था और जिनको यज्ञ में ओम राधे के नाम से पुकारा करते थे, वो बहुत तीव्र गुण वाले थे, संगीत प्रेमी भी थे, बहुत अच्छे भजनों की रचना करते थे और गाते भी थे। तो इस प्रकार से वो सत्संग और जब बढ़ने लगा तो मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती सब उन्हें बुलाने लगे और उनका नाम परमात्मा ने जगदम्बा ब्रह्मा बाबा नाम रखा और उनके साथ साथ मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती और उनके साथ साथ एक और दादी प्रकाशमणि, ये उनकी युवा अवस्था के चित्र है कुछ। तो ये कुछ बहुत नंबर 1, 2, 3 जैसे उस सत्संग में लगभग 300-350 लोग हुए। कई माताएं आई छोटे छोटे बच्चों को लेके भी, तो बोर्डिंग स्कूल बाबा ने खोला और बोर्डिंग स्कूल में उनको शिक्षा भी दी और शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता, लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिकता। और इस प्रकार से ये अलौकिक परिवार, वो लौकिक परिवार था बाबा का, तीन पुत्रियों और दो पुत्रों का, और ये अलौकिक परिवार, ये सब बच्चियां बढ़ने लगी और ये सब बताया। ये जो है जिन्होंने अपना जीवन ही ईश्वर के समर्पित कर दिया, और इस प्रकार की ये युवा बहनें आगे कराची में, ये क्लिफ्टन बीच है, जैसे बॉम्बे में बीच में जाते हैं लोग घूमने, तो बाबा इन्हें शारीरिक हेल्थ की भी शिक्षा देते थे, घुमाने ले जाते थे बीच के किनारे, और वहाँ पर ये सब तपस्या भी कराते थे, योग भी, परमात्मा का चिंतन भी। तो दोनों ही शारीरिक और मानसिक विकास, ये बाबा का लक्ष्य था, इनका होता रहा। ये बाबा और मामा, इनके माध्यम से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आगे बढ़ता रहा। और उसके साथ ही साथ वो स्थान पर, रंजी ने जैसे बताया 1936 में ये शुरू हुआ, और 1950 तक, 47 में आपको मालूम है भारत का को स्वतंत्रता मिली, विभाजन भी हुआ, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान दो ये बने। लेकिन ये सत्संग वहाँ पर 3 साल और रहा, 47 के बाद 1950 तक। लेकिन ये सब बच्चियाँ और इन बहनों के परिवार तो अधिकतर भारत में आ गए थे, तो उन्हें कई बार संकल्प उठता था कि ये सत्संग भी अगर भारत में आ जाए। उन्होंने कई बार बाबा को निमंत्रण भी दिया, और अल्टीमेटली परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्शन अनुसार ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका नाम शुरू में ओम मंडली था, ओम की ध्वनि से ये सत्संग शुरू होता था, इसका नाम ओम मंडली था, और उसके बाद ये 1950 में ये भारत आने आया। देखिए भारत आने की तैयारी, लगभग 350 लोगों को शिफ्ट करना कितना कठिन है, उनका कितना सामान सब, तो इसलिए पूरा स्टीमर ही बुक किया गया, जिसमें इन सब के लगभग ये 350 भाई बहन आए, और इनके साथ ही ये सब के देख ही रहे आप। और ये कराची से प्रस्थान किया इन्होंने, और ये आके ओखा बंदरगाह पर पहुँचे, ये जहाज में बैठे हुए, और ओखा बंदरगाह जामनगर के पास, वहाँ पर ये स्टीमर वहाँ पहुँचा, और वहाँ से आबू रोड तक ये ट्रेन में आया। ये 350 का लगभग अलौकिक परिवार ये ट्रेन में दिखाई दे रहे हैं आबू आते हुए। उस समय आज तो आबू रोड स्टेशन बन गया, पहले तो आबू स्टेशन छत भी नहीं थी, बस रोड साइड स्टेशन था, आबू रोड पर ये उतरे स्टेशन पर, और इस प्रकार से ये शिफ्ट हुआ। लेकिन बाबा का लक्ष्य था, और उसके बाद वहाँ से सब लोग माउंट आबू आए, और परमात्मा के निर्देश पर ही कि एकांत में आपको बैठ के तपस्या करनी है, योग तपस्या, तो बाबा और मामा के निर्देशन में ये योग तपस्या इनकी चलती रही। ये मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती ये बताए गए हैं, मामा बाबा यज्ञ के पालनहार ये जो आप देख रहे हैं। और इस प्रकार से ये माउंट आबू में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर पाकिस्तान से लेकर राजस्थान माउंट आबू में शिफ्ट हुआ। और ये माउंट आबू का चित्र है, ये एक मैंने जो शुरू में ऐसे 14-15-16 साल के थे, 17 साल के, वो उन्हीं में से एक ये दादी मनोहर इंदिरा, ये बाबा के साथ दिखाया गया है। और बाबा के साथ, मामा के साथ ये कुछ दैवी परिवार, इसके कुछ वरिष्ठ विशिष्ट सदस्य यहाँ पर दिखाए गए, दादी प्रकाशमणि, विश्व किशोर दादा जो ही वाज द मैनेजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड लाइक दैट इस प्रकार से ये बढ़ते गए। और फिर माउंट आबू से भारत के विभिन्न स्थानों पर इन्हें निमंत्रण मिले, और ब्रह्मा कुमारीज यहाँ पर आके ब्रह्मा के नाम से, ये संस्था का नाम फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो शुरू में ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ लखनऊ में, ये मामा गए लखनऊ में और उसके साथ ही साथ बताया गया किस प्रकार से बाबा मामा के सानिध्य में ये संस्था स्पिरिचुअली एज वेल एज फिजिकली ग्रोथ इसका होता चला गया और विशेष करके पहले नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में लखनऊ कानपुर दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे आदि में इसके ब्रांचेस खुले और ये ब्रांचेस खुलने के साथ साथ समय आगे बढ़ता गया और ये मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती शी वॉज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। उसके बाद धीरे 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 मातेश्वरी जी की तपस्या इतनी गहन होती चली गई, उनको जो भी देखता था बाबा मामा को वो देह दिखाई नहीं देती थी, बस देखते देखते ही वो आत्मा के उसमें विलीन हो जाते थे उसके सानिध्य में। बहुत हाई मुझे भी इनके साथ रहने का थोड़ा समय सौभाग्य के लिए मातेश्वरी जी के संपर्क में तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ब्रह्मा बाबा के संपर्क में लगभग 7 साल तक रहने का सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि कैसे उन्होंने अपना पूरा बैलेंस बना के रखा। शुरू में तो लौकिक और अलौकिक का बैलेंस किस प्रकार से, जब ये सत्संग में बाबा हो गए तो उन्होंने सबसे अपने पुत्र और पुत्रियाँ पुत्रियों का विवाह करना वो तो आवश्यक वो तो उन्हें करा, पुत्रों को भी बोला कि भी आपको अगर साथ में रहना हो बिजनेस हो और उसके उनको फ्रीडम दी, इतना बैलेंस बना के रखा तो कई कईयों को इस शिवरी विश्वविद्यालय में रहना अच्छा लगा, कई अपना बाहर का संसार में जाकर बिजनेस करा। और ये मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी ने 24 जून 1965 को अपना देह त्याग किया और ये देह त्याग करके उसके बाद दीदी मनमोहनी जी, यहाँ पर माँ मनमोहनी वन है वो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो और भी आगे देख लेंगे। और इसमें ये दीदी मनमोहनी जी, ये उनके बाद मातेश्वरी जी के जाने के बाद इन्होंने संस्था का कार्यभार इन्होंने देखा और बाबा को मैंने देखा। सबसे पहले बैलेंस जब मामा ने शरीर छोड़ दिया, मुझे याद है तब तो मैं उस समय धनबाद में पढ़ा करता था ISM में, जो बाद में IIT धनबाद हुआ, तो बस बाबा आते थे, मामा तो शरीर छोड़ के चले गए थे, तो बाबा ने माता और पिता दोनों का पार्ट बजाया और बाबा आके देखते थे इंडिविजुअली कोई गद्दा है कि नहीं, रात को सो रहे हैं, क्योंकि संस्था का इतना विशाल रूप तो था नहीं, बहुत छोटा माउंट आबू में रूप था, तो बाबा कई बार हम लोगों को जमीन पर भी सोते थे, बाबा देखते थे गद्दा तकिया सब सुविधाएं है कि नहीं। और इतना प्यार था बाबा का, आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, तो 17-18 साल के, तो बाबा ने एक दिन देखा ऐसे मैं जमीन पे सोने का था, तो बाबा ने कहा बुला के निमित्त लच्छू दादी होते थे, अरे अरे बच्चा यहाँ पर सो रहा है, नीचे गद्दा भी नहीं है और ये, आओ आओ बच्चे तुम बाबा के साथ आओ बाबा के कमरे में सो। तो मैंने कहा नहीं नहीं बाबा आप वहाँ पर हैं, आई एम क्वाइट यंग और यहाँ पर मैं आराम से सोऊंगा, नहीं नहीं चलो। इतना स्नेह से बाबा ने करा, ले भी गए, फिर वहाँ पर कमरे में बाबा ने कहा अरे बच्चे यहाँ पर आराम करना, बहुत आराम से बाबा, इतना स्नेह प्यार, बाबा ये पलंग है ऊपर सोएगा, तुम्हारा बिस्तर नीचे। दिल लेने की बात, सोने की बात नहीं, सुविधा की बात नहीं, लेकिन दिल लेके बाबा ने इतना अपना निकटता की अनुभूति कराई। और इस प्रकार से सब आते थे, कोई लखनऊ से पार्टी आई, कानपुर से आई, अलग अलग स्थानों से पार्टियां आते थे, जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खुलते चले गए और ये सेवा केंद्रों के खुलने की प्रथा देखते थे, सब आते थे बाबा के पास रहते थे और कुछ दिन यहाँ रहते थे और उसके बाद जाते थे। और ये एक चित्र बहुत हर एक के दिमाग में जो माउंट आबू गए होंगे तो एक हमारा फ्रंट गेट है, बैक गेट है, तो बाबा बैक गेट तक छोड़ने आते थे। और उन दिनों में इतना साधन कार वगैरह सेवाएं नहीं थी, तो बैक गेट तक बाबा आते थे, सबको बस रुमाल से हिला के छुट्टी दे रहे हैं, और हर एक की आंखों में नम हो जाती थी, क्योंकि इतना प्यार तो लौकिक पिता माता उनसे भी नहीं मिल पाता है। मिलता जरूर है, लेकिन ये आध्यात्मिक रूहानी प्यार और इसकी अनुभूति, और ये इस प्रकार से बाबा का जीवन। फिर आया ब्रह्मा बाबा, अब सब जगह के लोग तो आ नहीं सकते थे, तो बाबा पत्र लिखा करते थे, और पत्र लिखने का स्टाइल ये भी, कभी आपने ऐसा पत्र देखा है, ये रेड पेन से सिंधी में बाबा का पत्र लिखा हुआ, और वो डिस्टेंट पर एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, बीच में काफी जगह होती थी, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन करके भेजा जाता था। तो इस प्रकार से ये पत्रों के द्वारा हम लोगों को, मुझे भी ये सौभाग्य मिला है। मैं ONGC ज्वाइन करी 67 में, आसाम में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई थी, तो बाबा के इस प्रकार के लगभग 10 पत्र, बहुत ही इतना स्नेह प्रेम से भरे हुए कि उस यंग एज में भी पूरा दुनिया का आकर्षण होता है, लेकिन परमात्मा के प्यार ने अपना बना करके इस तरफ खींच लिया। और बाबा की झोपड़ी ये देखिए, इसमें ऊपर गए होंगे आप लोग, कई लोग न गए हों तो अब आपका घूमने का दिन 15 तारीख है, तो आप ऊपर जाके देखेंगे, ये एक झोपड़ी है और जिसमें अक्सर करके बाबा बैठ के बच्चों को पत्र लिखा करते थे और योग तपस्या कराते थे। ये है हिस्ट्री हॉल, यानी कि क्लासरूम, जिसमें बैठ के हम सब लोग योग करा करते थे और बाबा आके क्लास कराते थे। ये हिस्ट्री हॉल का बड़ा रूप है। ये है बाबा का कमरा, बहुत छोटा कमरा था, 1x8x10 का, उसमें बाबा रहते थे, लेकिन बच्चों के लिए बड़े बड़े मकान भी बनाए, और बाबा हमेशा कहा करते थे ये बच्चों का है, और बाबा तो ये इस छोटे पुराने स्थान पर ही रहेगा। तो ये बाबा का कमरा, अब तो उस कमरे को एक्सटेंड करके और भी बड़ा बनाया गया है, और इस प्रकार से ये तीसरा। और फिर वहाँ पर इसी प्रकार से चार धाम, उन्हें हम बोलते हैं जैसे चार धाम कहे जाते हैं, तो ये बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपने इस देह का त्याग किया। और मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं आसाम में पोस्टेड था, लेकिन बाबा ने अंतिम समय में बुला लिया, और 17 और 18 जनवरी को बाबा ने किस प्रकार से अपनी इच्छा से ही जैसे देह त्याग किया, वो देखने का मौका मिला। ये 18 जनवरी का अव्यक्त ब्रह्मा बाबा हुए, और ये ऊपर चौथा शांति स्तंभ उनकी स्मृति में बनाया गया है। तो ये चार, एक शांति स्तंभ, बाबा का हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, और दूसरा चौथा बाबा की झोपड़ी, इन्हें हम चार धाम कहते हैं। और जो भी बाबा के बच्चे आते हैं ऊपर जाके इन चार धाम में कुछ मिनट जरूर डिवोट करते हैं, और कुछ मिनट में ही अपने को इतना शक्ति के संचार का अनुभव करते हैं। तो ये शांति स्तंभ, और हाउ टू हैव द बैलेंस इन लाइफ, वो शक्ति का आभास सबसे बड़ी बात है। मन के अंदर अगर कोई प्रश्न होते हैं ना, बाबा के कमरे में जाते हैं, शांति स्तंभ में जाते हैं, बैठे बाबा को अपने मन की बात सुनाई, और बाबा उसका समाधान करते हैं। ये आप भी अनुभव अवश्य करिएगा, जब यहाँ आए हैं चार, वहाँ पर जाएंगे तो चार धाम की यात्रा, इसी को ही चार धाम की यात्रा कहा जाता है। ये शांति स्तंभ है, और ये देखिए पूरे विश्व भर से लोग आते हैं, ये शांति स्तंभ जो बाबा की याद में बनाया गया है वो है। और ये चारों के ही पिक्चर ये दिखाए गए हैं ऊपर जो है शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और बाबा की झोपड़ी। और फिर बाबा ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी प्रकाशमणि जी, ये उनका चित्र है, फोटो है। 1969 में इन्होंने बाबा के बाद इंस्टीट्यूशन का चार्ज लिया और 2007 तक आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पीरियड, 30 और 7 37 और 38 वर्ष तक इन्होंने इस ईश्वरीय संस्था की ग्रोथ में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और ये दो का एक जोड़ी थी, इन्हें हम दादी दीदी, ये जो लंबी और पतले हैं इनको हम दादी कहते थे। सिंधी में दादी का मतलब एल्डर सिस्टर होता है, दीदी का मतलब एल्डर सिस्टर और दादा का मतलब एल्डर ब्रदर, और इसी प्रकार से इनको दादी और दीदी। इस जोड़ी ने अप टू 1983 तक बहुत अपना कार्यभार संभाला और इनके द्वारा इंस्टीट्यूशन की बहुत ग्रोथ हुई। और सबसे पहला हमारा फॉरेन डेलीगेशन उसी समय 71 में गया और पूरे विश्व भर में ज्ञान का बीज जो बोया। वो ये हमारे मुख्य 8 दादियां हैं जिनके मैं सिंपली नाम बता देता हूँ। एक साइड से दादी मनोहर इंदिरा जी, दादी गंगे जी, रतन मोहनी दादी जी, दादी गुलजार जी, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, दादी निर्मल शांता और दादी चंद्रमणि जी दादी। तो इस प्रकार से ये 8 मेन पिलर जैसे रहे, अलग अलग जोन्स में संभालते थे, कोई साउथ इंडिया, कोई नॉर्थ इंडिया, कोई पंजाब आदि आदि। और इनके द्वारा आज ये परिस्थिति है कि पूरे विश्व भर में हमारे इतने सारे सेंटर हैं, 500 से अधिक सेंटर तो विदेश में हैं और भारत में लगभग 7-8 हज़ार के करीब सेवा केंद्र हैं। और मधुबन में विदेशी भाई बहनों का प्रथम ग्रुप आया और वो दिखाया गया है। जब आया तो ऊपर मधुबन, मधुबन हम लविंगली जो पांडव भवन माउंट आबू है उसे हम स्नेह से मधुबन कहा करते हैं, और ये सब मधुबन की आर्म्स है, शांतिवन आदि आदि। ये ओम शांति भवन है जो माउंट आबू में हमारा इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है। ये बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ आप जब जाएंगे देखेंगे। मैं थोड़ा रश कर रहा हूँ। ओम शांति भवन में पहला जब साधु संत सम्मेलन हुआ, हरिद्वार, बनारस, अलग अलग स्थानों से महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य आदि आदि आए थे, ये उस समय का एक फोटो है। और जब वो स्थान थोड़ा छोटा पड़ने लगा तो एक अन्य स्थान माउंट आबू से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर लिया गया, उसको हम ज्ञान सरोवर कहते हैं, विच इज अवर एकेडमी, एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड। और ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत हमारी 20 विंग्स हैं जैसा बताया भी गया आपको। और उन्हीं में से एक विंग साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर्किटेक्ट विंग, उसके द्वारा ये 12 से 16 तक का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ये भी बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल है, आप लोग देखेंगे किस प्रकार से वहाँ। तीसरा चीज है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। दिस ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन इज नॉट ओनली अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बट ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। यहाँ पर काफ़ी पिछड़े हुए लोग रहते हैं, दूर दूर गाँवों में गरीब जनता है, तो उन सब के हित के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर खोला गया है, वो भी माउंट आबू में है। उसका भी आप अवलोकन करेंगे जब देखेंगे किस प्रकार से अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी के साथ यहाँ की जनता को उसका बताया गया है। और ये यहाँ पर शांति वन में आप यहाँ आए हैं देख रहे हैं, और जिस डायमंड हॉल में आप बैठे हैं ये ही यहाँ पर बताया गया है। इतना बड़ा ये तो पर्दा लगा के पार्टीशन किया गया है और इसके बैक पोर्शन में 3E वो यहाँ का एक एक्सपो लगाया गया है जिसके बारे में आपको बताया भी, कल भी बताया गया था, आज भी मैं जस्ट रेफरेंस में बता दूं कि बहुत 3E जो है तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी एनवायरनमेंट एंड एम्पावरमेंट उन तीन के ऊपर यहाँ पर पीछे एक्सपो लगाया गया है। कल को आप जब लंच पीरियड का खाली टाइम 1 से 4 के बीच में होगा उसमें और विशेष अवलोकन कीजिएगा। यही वो डायमंड हॉल है जहाँ आप बैठे हुए हैं जिसकी कैपेसिटी अगर पूरा देखा जाए तो लगभग 25,000 की इसकी कैपेसिटी एंड पिलरलेस हॉल देख ही रहे हैं आप। ये भी अपने आप में एक अद्भुत आश्चर्य है। और ये दादी प्रकाशमणि जिन्होंने 2007 तक इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया और इन्होंने 25 अगस्त 2007 को अपना शरीर छोड़ा और उनकी स्मृति में यहाँ सामने प्रकाश स्तंभ बनाया गया है, वो आप प्रकाश स्तंभ देख रहे हैं। मैं अभी ये और इसमें समय नहीं, इनके बाद दादी जानकी जी मुख्य प्रशासिका हुई और ये इस इंस्टीट्यूशन का विस्तार होता चला गया। उनके पश्चात दादी हृदय मोहनी जी, गुलजार दादी जी वो, और ये और इनमें एक विशेषता थी कि इनके तन का माध्यम का आधार लेकर परमपिता परमात्मा शिव जिन्होंने शुरू में 1969 तक प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ज्ञान दिया, उसके बाद इन दादी हृदय मोनी जी के तन का आधार लेकर इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते रहे। बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का, मैं इससे अधिक और अभी नहीं, अभी आप सब लोग जाएं भोजन करें क्योंकि फिर लगभग 8:45-9 बजे आप लोगों को यहाँ पर आना है। इस संबंध में और कुछ भी आपका हो तो लास्ट में प्रश्नोत्तर का एक सेशन भी होगा, उसमें भी संस्था या योग किसी के बारे में आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।